نمبر 6 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں, ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے. آگی نا وہی بات, کافر کا جینا کیا ہے؟ جانور کا جینا, اشتہا کے ساتھ, خواہشات کے ساتھ. اللہ ایمان والوں کو کیا کہتا ہے کہ تم ایسے نہ بن جاؤ. اور ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے جن کا مددگار کوئی نہ تھا. افمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو, اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام خوبصورت کر دکھایا گیا ہو اور وہ اپنی نفس کی خواہشوں کا پیروکار بن چکا ہو. مثل الجنت التی وعد المتقون, اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبودار نہیں ہے, اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا, اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے, اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں, اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں, اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ اس کے مثل ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اس اہل علم سے بوجہ اپنی کن ذہنی اور لاپرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. والذین اهتدوا زادهم هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم, اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دی اور اس میں بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ, تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گی؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں, پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. سو اے نبی, آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں, اور مومن مردوں اور عورتوں کے حق میں بھی. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی آمد و رفت اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. یہ تھا رکوع نمبر 6. اس کا عنوان کیا ہے؟ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پورے رکوع میں ایمان والوں کا کفر والوں سے تقابل کیا گیا. ایمان والوں کی 6 باتیں ہمیں معلوم ہوئیں. نمبر 1, نیک عمل کرتے ہیں, اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی, اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہیں, پرہیزگار ہیں یعنی متقی ہیں, اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دے گا اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ بھی دے گا. اس کے برعکس کفر والوں کے 5 باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1, دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں, سچ ہے نا, جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں, ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے, ان کے لیے ان کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا اور اپنی خواہشوں کے پیروکار ہو گئے. پھر جنت کی شان بیان کی گئی کیونکہ اوپر ایمان والوں کا ذکر تھا. 5 باتیں جنت کی نعمتیں. نمبر 1, صاف ستھرے پانی کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. آج دنیا میں دودھ تھوڑی دیر باہر پڑا رہے نا تو ٹیسٹ بدل جاتا ہے. खुला कहते हैं फ्रिज में रखो, और वो नहरें जो खुली होंगी, ओपन में होंगी और खराब नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। फिर शराब की नहरें होंगी जो पीने वालों के लिए लजीज होंगी, शहद की नहरें होंगी जो साफ सुथरी होंगी, और जन्नत में हर तरह के फल होंगे। इसके बरक्स अब जहन्नम का इंजाम क्या बताया? नंबर एक, जहन्नमियों को गर्म पानी पिलाया जाएगा जो इनकी आंतों को काट के रख देगा, और इसमें जाने वाले हमेशा इसी में रहेंगे। कौन कौन बेहतर रहा, किसका मामला अच्छा रहा? दुनिया मुश्किल लगी कितने दिन की थी, जन्नत आखरत अच्छी हुई वो कितने दिन की है कोई तकाबुल? अगर आज चंद दिन की जिंदगी और दुनिया में ख्वाहिशों पे काबू पाके अगर अल्लाह ताला से वो जन्नतें ले लो तो क्या बनता है? अल्लाह ताला, अब देखिए नहरें, ये आयतें पढ़ के तो अजीब हालत होती है, और यकीन करें कि हमारा ईमान है कि ये होगा, ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा। जो अल्लाह के लिए सब्र करेगा, उसके फैसलों को कबूल करेगा, अल्लाह ताला उसको वाकई वो जन्नतें देगा। अच्छा, अब जब ये मैं ये बात सामने रखती हूँ यंग बच्चों के, तो उनको मज़ा ही नहीं आता। वो क्या कहते हैं, आंटी वहां तो कोक की नहर होनी चाहिए, वहां तो मोल्टन मोल्टेड चॉकलेट की नहरें हो। तो मैंने कहा आप दूध में चॉकलेट मिला लीजिएगा। आप बच्चे को कहें दूध की नहर है तो वो आऊं करेंगे, आप उसमें चॉकलेट डाल दें तो खुशी से पी जाएंगे। पानी की जगह कोक की नहर होगी, जो चाहेगा मिल जाएगी इनको। हाँ, बच्चों को खुश किया करें ये बातें कि बेटा तुम्हें वो जन्नत नहीं लेनी कि जिसमें इस तरह नहरें, तुम टैप खोलो और अंदर से कोक निकल रहा है। हाँ? तुम यानी मुंह खोलो और तुम्हारे मुंह के अंदर चॉकलेट की कैंडीज गिर जाएं। तुम ये कैंडी छोड़ दो हलविन की खानी, अल्लाह ताला वहां की कैंडीज खिलवा देगा। क्यों नहीं हो सकता? उस रब ने हमें कैसे पैदा किया, ये दुनिया कैसे बनी? बिल्कुल हो सकता है, हमारा ईमान है। दूसरी, अभी इतने हिस्से में जो हमने बात की जिसमें मैं आपसे बात करना चाहूंगी, वो है काफिरों का रवैया, ना शुक्रों का, और वो क्या है, जानवरों की तरह जीना। जानवर कैसे जीते हैं? अगर आप इस आयत को हाईलाइट कर लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा होगा, और आप इसको मजीद अच्छे तरीके से समझेंगे। आयत नंबर 12 के अंदर ही आता है, वल्लज़ीन कफरू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनाम वन्नारु मस्वल्लहुम। जानवरों की तरह खाते हैं, जानवर की क्या आदत होती है? अब देखिए कि जानवर शहवत का सिंबल है, ख्वाहिशात का, डिजायर्स, लस्ट। आप मुख्तलिफ जानवरों को देखें, लेक्चर था यानी जो मैंने सीरीज रमजान से पहले करवाई थी, अब दिल को बदलना है, तो उसमें से एक लेक्चर था ही पूरा इसमें कि इंसान के अंदर कैसे बहीमियत आती है, जानवरों वाली सिफात। बस आप देखिए कि कुत्ता हेड्स की अलामत है, लालच, ग्रीडीनेस। अल्लाह ताला ने कुरान में उसकी मिसाल दी, आप पढ़ के आए हैं पीछे सूरत अनफाल में, मुंह लटकता रहता है। यानी वो लोग जो दुनिया की हर चीज पर अपनी राह लटका लेते हैं, फैला लेते हैं, वो ऐसे ही है जैसे कुत्ते की मिसाल। फिर आप देखिए ऊंट, उसका गुस्सा मशहूर है, कीना। फिर देखिए सांप, इंतकाम लेना, माफ नहीं करता अपने दुश्मन को। इसी तरह आप देखिए कि घोड़ा अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और जब बिफरता है, जब आता है, तो अपने मालिक ही को अपने पाँव के नीचे ले लेता है। वो लोग जो दुनिया में रब को पहचाने बगैर जी रहे हैं, वो वाकई जानवरों की सतह पे जी रहे हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और शादी करो, यही नारा है ना आज के दौर का, ये तो जानवर करते हैं। जानवर सब कुछ कर सकते हैं लेकिन तदब्बुर नहीं कर सकते, यही इंसान और इन जानवर में फर्क था। वरना अगर आप देखें कि बहुत सारे जिस्मानी अज़ा इंसानों और जानवरों के मिलते हैं, है कि नहीं? गोश्त, अब देखिए जुबान हमारी भी है उनकी है, हम भी कान रखते हैं उनके भी हैं, थोड़ी थोड़ी ज़ाहरी हैयत का फर्क है। और ये नहीं हो सकता कि कोई जानवर कानों से देखे और आंखों से सुने, नहीं, ये चीजें वाज है, सबका एक है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, जुबान से चखना, टांगों से चलना, हाथों से पकड़ना, सब बराबर है। कौन सी चीज है जो इंसान को जानवरों की सतह से उठा के इंसानों की सतह पे लाती है? ख्वाहिश नफ्स पे कंट्रोल, लस्ट पे कंट्रोल। यही इसमें बात कही गई कि यतमत्तऊना, उठा लो फायदे, उठा रहे आज, याकुलून कमा ताकुलुल अनाम, अगर वो इंसान जो अपने आप को ख्वाहिशों का गुलाम कर ले फिर उसको सामने रखें तो फिर उसमें और जानवर में बहुत ही थोड़ा फर्क नजर आता है। तो लिहाजा हमने इसे क्या सीखा, ख्वाहिशों पे काबू डालना है। अल्लाह ताला से इस चीज की दुआ करनी है कि अल्लाह हमें अपने नफ्स पे काबू पाने की तौफीक दे, हिदायत पे कायम रखा और हमें तकवा की जिंदगी अता फरमा, फिर ही ये सब मिलेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत का सवाल करती हूँ, मैं तुझसे तकवे का सवाल करती हूँ, मैं तुझसे बेनियाजी का और पाक दामनी का, मेरे दामन पे कोई धब्बा न लगे। ऐसे ही लोग फिर उन जन्नतों में जाएंगे जिसमें दूध की नहरें होंगी, पानी की नहरें होंगी, और मंजर कितना खूबसूरत होगा। यदि दिल चाहता है कि बस आंखें बंद करें और एक दफा वो नहरें ख्वाब में ही देख लें कि कैसी होंगी, लेकिन नहीं देख सकते क्योंकि फला तआलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन। कोई नफ्स जानता ही नहीं कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या क्या सामान तैयार किए हैं। फिर इसके बाद कुछ और बात का मौजू पलटता है। कुछ लोगों की बातें बयान की गईं जो नबी सल्लम की महफिलों में आते तो थे लेकिन फायदा नहीं लेते थे। कैसे कि ध्यान कहीं और होता था। व मिनहु मै यस्तमीउ इलैक, आपकी तरफ कान लगाते हैं लेकिन वहां तो दिल कहीं और ही मुनहमिक होते हैं, और बाहर जाके फिर पूछते हैं क्या कहा था वहां, आज क्या बात हुई थी। भई आप किधर थे? वो मेरी आंख लग गई थी, वो मैं उस वक्त कुछ मसरूफ थी कुछ और सोचने में। ऐसे लोग ऐसे ही हैं कि चश्मे के पास जाएं और प्यासे वहां से आएं, समंदर के करीब आएं और एक कतरा भी उनके अंदर न जाए। ऐसे लोग जो थे अल्लाह के नबी सल्लम की महफिलों में आते जरूर थे लेकिन अपने ख्वाहिशात के गुलाम होने की वजह से कुछ अल्लाह ताला उनके दिलों पे फिर मोहरें भी लगा देता था। तो लिहाजा अगर कभी दीन की महफिल में दिल न लगे, तवज्जो इधर उधर हो, तो फौरन नौसुबिल्ला पढ़ के इस्तग़फार करने की जरूरत है कि अल्लाह कहीं मेरा कोई ऐसा गुना तो नहीं जो मुझसे इस ख्वाहिश को इस चीज को छुड़ा रहा है। जैसे कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद से क्या कहा था कि मेरा आज तवज्जो नहीं आ रही, मेरा दिल नहीं लग रहा इसमें। शकाउ तो इला वकी मिन सू हिफ्ज़ी, मैंने शिकायत की अपने उस्ताद वकी से अपने हाफजे की खराबी की। तो उन्होंने क्या कहा कि मासी को छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह का ये नूर है ये कुरान, और अल्लाह गुनाहगार के दिल में ये नूर नहीं डालता। और आज हम देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जिनको जरूरत है लेकिन इल्म की तरफ क्यों नहीं आते, आना भी चाहते हैं तो आते क्यों नहीं, शायद रास्ते में कोई बहुत बड़ा गुनाह है जो रुकावट बना हुआ है। तो लिहाजा हमने अपने आप को खुद इस चीज के काबिल करना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि दोनों बराबर नहीं, यानी जन ईमान वालों की बात भी कह दी बराबर नहीं। कैसे बराबर नहीं, अगर आप एक स्लैश डाल लें बीच में सफ़े में तो एक तरफ ईमान वाले लिखिए और दूसरी तरफ काफिर लिखिए, और फिर इन दोनों का तकाबुल कीजिए। जो अल्लाह ताला ने इधर कहा ईमान वाले हिदायत पर हैं, इसके मुकाबिल ना मानने वाले ख्वाहिशों के पैरोकार हैं। ईमान वालों को अल्लाह ने हिदायत में और बढ़ा दिया और ना मानने वालों के बुरे अमल और खूबसूरत बन गए। ईमान वालों के हिस्से का तकवा अल्लाह ने इनको ज्यादा दिया और ना मानने वालों के दिलों पर ठप्पे लगा दिए बंद स्टैम्प्ड, और मानने वालों के लिए जन्नत है और ना मानने वालों का ठिकाना जहन्नुम है। अपना जायजा लेते हैं कि हम कौन से लोगों में से। कभी आपने सोचा मैं कहाँ जाऊंगी? इतना जिक्र सुनते हैं ना कुरान में जन्नत का जहन्नम का, आपके दिल को यकीन आता है कि आप कहाँ जाएंगे? कभी आपने इस मौजू पे सोचा? आप कहते हैं पता नहीं, अल्लाह को पता है, आपको भी पता है, आपको मालूम है आप कहाँ जाएंगे, मुझे भी पता है कहाँ जाऊंगी। कैसे? दुनिया में कोई काम होना होता है ना, उसकी इस पहले से अलामतें दिखनी शुरू हो जाती हैं। वैसे बच्चा पैदा होना हो तो औरत की कैफियत बताती है ये प्रेग्नेंट है। घर में शादी हो तो घर का माहौल बताता है कि यहाँ शादी की समा है। किसी को पाकिस्तान जाना है तो उसकी भाग दौड़ दौड़ धूप बताती है कि वो पाकिस्तान जा रहा है, तैयारी कर रहा है, सामान कर रहा है। इसी तरह दुनिया में हमारी भाग दौड़ बताती है कि हम किधर जाने वाले हैं, किसकी तैयारियां कर रहे हैं, क्या जमा कर रहे हैं, एक एक नेकी के मौके को समेट रहे हैं या बड़े फराख दिल होके जाया करें, चलो छोड़ो आज ये नेकी नहीं करते। मुझे ऐसे लगता है कि हम नेकियों के मामले में बड़े शाह खर्च हो जाते हैं, बड़े बड़े मौके आते हैं और हम सिर्फ अपनी सुस्तियों और कोताहियों की वजह से उसको मिस कर देते हैं। कभी भी कोई ऐसा मौका है तो फौरन सोचा करें, क्या मैं अपने हिस्से की नेकी छोड़ दूंगी, मैं महरूम रहना चाहती हूँ, क्या ये नेकी मेरी छिन जाए मुझसे। और आप देखेंगे कि जितना नेकियों की कदर करनी शुरू कर देंगे ना, अल्लाह आपको मौके बढ़ाते देगा। बाज लोग कहते हैं कैसे मौके मिलते हैं, कैसे ख्यालात आते हैं दिल में, ये करें वो करें, मैं कहती हूँ कि जितना आप एक मौके को अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं ना, अल्लाह ताला उसके ख़त्म होने से पहले आपके दिल में कोई और बात डाल देता है, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और। तो लिहाजा अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें उस जन्नत का राही बना दे। और जहन्नमी का कैसे पता चलता है, उसकी ख्वाहिशों की पैरवी बताती है कि वो कहाँ जाएगा। अगर आपने कभी पहाड़ी सफर किया हो ना, पहाड़ी इलाके में गए हो, तो आपने देखा होगा कि जब ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो गाड़ी बड़ी जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करनी पड़ती है, हाई फोर व्हील गाड़ियां चलती हैं, स्टेयरिंग पे नजर, निगाह सड़क पे, एक लम्हे चौकस होके बैठते हैं क्योंकि हल्की सी भूल आपको नीचे गिरा देगी, थकन भी होने लगती है, आसाब खींचते हैं, फिर खैर आप पहुंच जाते हैं ऊपर। लेकिन जब नीचे जाना होता है, पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, तो अमूमन गाड़ी बंद कर दी जाती है, न्यूट्रल में करके सिर्फ स्टेयरिंग घुमाते जाते हैं और नीचे जाएंगे, ब्रेक से पांव उठा लो। इसी तरह जिनको जन्नत में जाना है ना, ऊपर जाना है, उनको अपने आप को काबू में रखना पड़ेगा, कंट्रोल्ड, नफ्स की गुलामी नहीं, ख्वाहिशात के गुलाम नहीं। और जहन्नम में जाना है तो बस एक काम करना पड़ेगा, ब्रेक्स उठा लो, ब्रेक के पांव उठा लो, जो चाहे करो। जहां अल्लाह ने हराम्स क्या है, हराम क्या है, अल्लाह के लगाए हुए ब्रेक है, स्टॉप इट, ये स्टॉप साइंस है, हर हराम एक स्टॉप साइन है। दुनिया के स्टॉप साइंस में रात 12 बजे भी जाएंगे तो रुकते हैं, मुझे उस वक्त वो ड्राइवर बड़े अहमक लगते हैं, खुली सड़क है, चारों तरफ कोई नहीं, रात के 2 बजे हैं और आप गाड़ी रोक रहे हैं, क्या भाई खैरियत है, रुकना है जी, ये कानून है, कोई भी तो गाड़ी नहीं आ रही, उधर भी नहीं, इधर पूरी, यानी बाजा बिल्कुल वो बड़े वो होते हैं ना राउंड अबाउट, चारों तरफ से आपको दिखता है, कोई अल्लाह का बंदा नहीं होता, आप वहां गाड़ी रोकते हैं, क्यों, कानून है, टिकट मिल जाएगा, छुपे होते हैं अंदर, देख रहे होते हैं हमें, पुलिस निकल आएगी। मैं कहती हूँ इसी से सीख लो कि रात के अंधेरों में रब की नाफरमानियां करने से डर जाओ, वो भी छुप छुप के देखता है, वहां भी स्टॉप साइन लगाया करो कि स्टॉप इट, वहां भी कुछ सुर्ख लाइटें होती हैं, कुछ येलो होती हैं, उसकी हर लाइट को ग्रीन ना समझो। जो लोग ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं फिर वो ऐसी पाबंदियों को कबूल नहीं करते और उनको ये बातें अच्छी भी नहीं लगती कि क्यों इतना जोर दिया जाता है इन बातों पे। आगे चलें, हकीकत क्या है कि ये पारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। अगर अभी भी हमारे अंदर वो ईमान और तकवा नहीं आ रहा जिसकी नीयत करके हमने इस सफर को शुरू किया था, तो फिर डोज तो बढ़ानी पड़ती है ना। चलिए, कुछ क़यामत के मनाजर और कुछ और चीज़ें हैं, इसके बाद अगला रुकू शुरू होता है, रुकू नंबर 7। وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی سورت نازل فرمائی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، बस बहुत बेहतर था इनके लिए फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का कहना, फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अगर अल्लाह के साथ सच्चे रहें तो इनके लिए बेहतर है। और तुमसे ये बात भी बईद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फसाद बर्पा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ दो। और ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फटकार है और जिनकी सिमात और आंखों की रोशनी छीन ली है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबी अक्फालुहा, क्या ये लोग कुरान पाक में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले पड़ चुके हैं। जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے اس فعل کو خوبصورت کر دکھایا اور انہیں ڈھیل بھی دے رکھی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی ان قریب بعض باتوں میں تمہارا کہنا مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ بس ان کی کیسی درگت ہوگی اس وقت جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے۔ فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اس راستے پر چلے کہ جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت محمد میں اعمال کی بات بہت آ رہی ہے، عمل عمل عمل، اور عموماً لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے کیا امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی نام کے ساتھ تھوڑا سا جوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ نام ہے سورت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورت کے اندر فوکس کیا جا رہا ہے بار بار عملوں کو، اور اللہ کے نبی نے ساری زندگی عمل ہی کی دعوت دی۔ ہم نے آج کیا ان کے ساتھ معاملہ کر لیا؟ کچھ بھی کر لو، کچھ نہ کرو، سفارش کر دیں گے، آئیں گے اور ہمیں پیار سے لے جائیں گے، کیا اللہ میرے ان لوگوں کو چھوڑ دو، یہ بڑے شرابی تھے چھوڑ دو، یہ زانی تھے ان کو چھوڑ دو، یہ سود لیتے دیتے تھے چھوڑ دو ان کو، یہ چونکہ میرے تھے تو ان کو چھوڑ دو، توقع کرتے دنیا میں اللہ کا نبی جو کسی کی غلط سفارش کرنے والے کو ٹوک دے۔ ایک موقع پہ کسی نے چوری کی اور چوری کے بعد آپ نے اس کی ہاتھ کاٹنے کی سزا دی، فاطمہ عورت کا نام تھا، لوگوں نے حضرت زید کو سامنے کیا کہ آپ کے بیٹے لپالک بیٹے ہیں، آپ سے محبت ہے، ان کو ان کے ذریعے سفارش کروا دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ نہ کٹیں۔ حضرت زید نے آ کے سفارش کر دی کہ اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے اس عورت کو، آپ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ میں سوچتی ہوں دنیا میں وہ اللہ کا نبی جو کسی کی چوری کی سفارش پہ اس طرح غصے میں آ جائے، کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ جو سارے گناہوں کے بعد اللہ کی نبی کی سفارشوں کی امید ہے، کیا ان کی محبت سے سفارشیں کریں گے کہ اللہ چھوڑ دو، یہ بڑے نافرمان تھے، یہ بڑے فاسق تھے، یہ بڑے حدوں کو توڑنے والے تھے، یہ بڑے نفس کے غلام تھے، لیکن تو ان کو چھوڑ دے، بات بنتی ہے؟ یعنی دل کو لگتی ہے یہ بات؟ دنیا میں بھی ایسی سفارش کوئی نہیں کرتا۔ ہاں سفارش کب ہوتی ہے؟ جب لگتا ہے کہ یہ کوشش کرتے تھے، اپنی کوشش سے کر نہیں پائے۔ تو بہرحال رکوع نمبر 7 ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ منافقوں کے کچھ اور حالات۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 18 باتیں کی ہیں منافقوں کے بارے میں، میرے حال اتنی تو آیتیں بھی نہیں تھی جتنے پول کھل گئے ان کے دلوں کے۔ کون سی، کن کی باتیں ہو رہی ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ نمبر 1، کہتے تھے کہ قرآن میں کوئی سورت جہاد کے لیے کیوں نازل نہیں ہوتی، پھر جب حکم آ جاتا تو ان پر موت چھا جاتی، یعنی اس خوف سے کہ اب جہاد کرنا پڑے گا۔ زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی باتیں، لیکن عمل کا وقت آیا تو عہد میں سچے نہ نکلے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ الٹے پھر گئے، زمین میں فساد کریں گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا، اور یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے، ہدایت واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے، شیطان نے ان کے برے عمل خوبصورت کر دکھائے، اللہ سے جھوٹی توقعات کا سلسلہ دراز کر لیا، انہوں نے دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ کی رضا والا طریقہ پسند نہ کیا کہ اس کو اختیار کریں، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ ان کی خفیہ باتوں کو جانتا ہے، اور فرشتے جب ان کی جان قبض کریں گے، ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر ان کو ماریں گے۔ آپ نے رکوع سنتے وقت یہ باتیں نوٹ کی تھی؟ 18 पॉइंट्स एक चार आयतों पांच आयतों में आपको मिले. यही है अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्यों नहीं कुरान पे गौर करते. आज कुरान पे तदब्बुर की आदत ही नहीं रही. मैं तो सच्ची बात अब सोच रही हूं कि मैं अगली क्लास शुरू करूं ना तो वो तदब्बुरुल कुरान की शुरू करूं. मानी उल कुरान तो पढ़ लिए, लफ्जी मानी तो पढ़ ले, रूट वर्ड्स तो पढ़ते हैं, ग्रामर तो पढ़ते हैं, बड़े बड़े टेस्ट तो देते हैं, लेकिन कुरान दिल के अंदर अमल के लिए नहीं बदलता, अमल नहीं बदलते. ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि जिससे एक एक लफ्ज़ का इंसान उसको अपने आईने में सुने कि फी ही ज़िक्रुकुम, लोगों इसमें तुम्हारा जिक्र है. ये किताब मुनाफिकों मुशरिकीन यहूद और नसारा के लिए नहीं, क्योंकि अमूमन इन्हीं के नामों के साथ पुकारा जाता है. ये किताब तुम्हारी किताब है, जो तुम्हें कुछ कह रही है, ये तुम्हें बुला रही है. तो दिल के बंद दरवाजों को खोलो और इसको अंदर आने की जगह दो. सहाबा कराम ने कोई बड़े बड़े कोर्स नहीं किए थे, उन्होंने मुश्किलात में नहीं पढ़े थे, उन्होंने तदब्बुरुल कुरान का ही कोर्स किया था. अल्लाह ताला हमें तौफीक दे. क्या इन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है ये समझ रखा है कि अल्लाह इनके कीनों को जाहिर ना करेगा, और अगर हम चाहते तो इन सब को तुझे दिखा देते, बस तू इन्हें इनके चेहरे ही से पहचान लेता, और यकीनन तू इन्हें इनकी बात करने के अंदाज से ही पहचान लेगा. तुम्हारे सब काम अल्लाह को मालूम है, यानी इनकी चिकनी चुपड़ी बातें, इनके बात करने के अंदाज तुझे बताएंगे कि इनके दिल में निफाक है या मोहब्बत. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ. और यकीनन हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे यहां तक कि तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को जाहिर कर दें, और हम तुम्हारी हालतों की को भी जांच लेंगे. यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से लोगों को रोका और रसूल की मुखालफत की इसके बाद के इनके लिए हिदायत जाहिर हो चुकी है, ये हरगिज हरगिज अल्लाह का कुछ नुकसान न करेंगे. अन करीब इनके आमाल जाया हो जाएंगे, अन करीब इनके आमाल को वो गारत कर देगा. फिर आ गया ना हम लोगों की बात. मेरा ख्याल है आप बात में कोई एक इस पे काम कर ले कि पूरी सूरत में यानी क्या कोई असर को था जिसमें अमल की बात हुई कि नहीं हुई, इसके नुक्ते नोट कर ले तो आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस सूरत में आमाल की बात हो रही है. अमल की बात करो, अमल की बात करो. या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहना मानो, और देखो अपने आमाल को गारत न करो. जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका फिर कुफर ही की हालत में मर गए, यकीन कर लो कि अल्लाह इनको हरगिज़ न बख्शेगा. फला तहिनू व तदऊ इलस्सल्म, तुम बोदे बनकर यानी कमजोर बनकर सुलह की दरख्वास्त न करो जबकि तुम ही गालिब और बुलंद रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, नामुमकिन है कि वो तुम्हारे आमाल को जाया कर दे. इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन वलहु वइन तुमिनु वततकु युतिकुम उजूरकुम वला यसअलकुम अमवालकुम. दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा है, और अगर तुम ईमान ले आओ, लाना चाहते हैं शौरी ईमान और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अजर देगा और वो तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता. अगर वो तुमसे तुम्हारा माल मांगे और जोर दे दे कर मांगे तो तुम इससे बुखल करने लगोगे और वो तुम्हारे कीने जाहिर कर देगा. दिल में कीने थे, जाहिर हो जाएंगे. हा अंतुम हा उलाई, खबरदार तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो तो तुम में से बाज तो बुखल करने लगते हैं, और जो बुखल करता है वो दरअसल अपनी जान से बुखल करता है. अल्लाह गनी है और तुम फकीर और मुख्ताज हो, और अगर तुम रूगरदानी करोगे तो वो तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा औरों को ले आएगा. जो तुम जैसे न होंगे। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्म ला यकूनू अम्सालकुम। मुझे ऐसे लगता है कि ये अल्लाह हम आज के मुसलमानों को कह रहा है, मैं और लोगों को ले आऊंगा, वो तुम जैसे नहीं होंगे, नमाजों से गाफिल, शिर्क करने वाले, अल्लाह की हदों को पामाल करने वाले, अल्लाह की लगाई हुई पाबंदियों को कबूल ना करने वाले, तावीलात करने वाले, समझौते करने वाले, अपने दीन को चूं चूं का मुरब्बा बनाने वाले ना होंगे, वो खालिस लोग होंगे। ये थरको नंबर 8, इसका उनवान क्या है? कुछ नहीं बिगाड़ रहे। किसका बिगाड़ रहे हैं? और अगर वो को हम कर लें तो फिर तो क्या कहने, हम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। लोग सोचते हैं ना ये बात, आज दुनिया में छुपते हैं तो कल भी छुप जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें आंखों से दिखाऊंगा कि इनका ये इंजाम क्या हुआ, और तुम इनके अंदाजे कलाम से इनको जान लोगे। इसमें बहुत बड़ी बात की है अल्लाह ताला ने, बात करने के अंदाज पे तनकीद की गई कि ऐसे लोग जो हैं वो अपनी बातों से ये चीज़ साबित करते हैं कि उनके दिल में कितना ईमान है और कितना ईमान नहीं है। अमूमन ऐसी बातें कि जो सिर्फ बातों की हद तक खुश करने वाली हैं। फिर दूसरी बात इस रुकू में हमने देखी कि अल्लाह ताला आजमाइश में डालते हैं। क्यों? दो बातें हैं। क्यों? हालात की जांच कर लें, जांच परख करें तुम्हारी, और देखें कि तुम में से मुजाहिद कौन है और साबित कदम कौन रहता है। फिर उन लोगों की बात हुई जिन्होंने अल्लाह के नबी से झगड़ा किया। क्या कहा? कि उन्होंने कुफर किया, यानी रसूल से झगड़ना कुफर करना है, अल्लाह की राह से रोका, राह रास्त इन पर वाज़ हो चुका था, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और अल्लाह इनके सारे अमाल को ज़ाया कर देगा। फिर इसके बाद चौथी बात जो हमने इस रुकू में देखी वो क्या थी? कि अल्लाह ईमान वालों के अमाल ज़ाया ना करेगा कुछ शरायत के साथ। वो शरायत क्या है? नंबर 1, अगर अल्लाह की इताअत करेंगे, रसूल की इताअत, अमाल की बर्बादी से बचना, कमज़ोर नहीं बनना, सुलह की दरख्वास्तें ना करो दुश्मनों से, तुम गालिब रहोगे। मुसलमानों को एक सोच दे दी कि अपने मफादात की कीमत पे मुआहदे ना करो गैर मुस्लिमों से, इनके उन समझौतों पे साइन ना करो जिससे तुम्हारा इस्लाम बदल जाए और बिगड़ जाए, सिर्फ ये सोच के कि तुम्हें इनसे मदद लेनी है। आपको पता है कि सूरत मोहम्मद पे भी बड़े एतराजात उठते हैं नॉन मुस्लिम्स की तरफ से। आपने तो शायद उस चीज़ को महसूस किया, लेकिन वो कर लेते हैं क्योंकि इसमें अल्लाह ताला दो टोक फैसले करवा रहा है। देखो, कमज़ोर बन के मत जीना, तुम इनके साथ ऐसे सुलह की बातें ना करना, हमें माफ़ कर दो, हम बड़े अच्छे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मानेंगे। नहीं, बराबरी के ऊपर मामले करो, तुम अपनी बात रखो, जिसमें तुम्हारा फ़ायदा है तो वो रखो, जिसमें तुम्हारा नुकसान है उसको कभी ना मानना। फिर इसी तरह अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अमाल को ज़ाया नहीं करेगा, और अल्लाह ताला ईमान और तकवा के रास्ते पे चलने वालों को उनके अजर देगा। और उसके बाद एक पांचवा नुक्ता तो इस रुकू में हमने देखा, वो क्या था? अल्लाह गनी है और तुम मुख्ताज हो। कैसे? दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा है। अल्लाह अगर तुमसे सब कुछ मान ले तो तुम बुखल करने लगो। इसको हाईलाइट कर लीजिए, आयत नंबर 37 है ये। इन यस अल कुमूहा, और अगर वो तुमसे तुम्हारा सारा माल मांग ले तो तुम बुखल करो। अभी 100 में से 250 मांगता है तो कितनी तावीलें करते हो कि आधा उतर जाए, बस 2 रह जाए। जब लोग ये सवाल करते हैं ना कि जेवर पे ज़कात है, जी है, अच्छा उसमें तो स्टोन्स भी होते हैं, अच्छा उसमें खोट भी होता है, उसमें पीछे डोरी का वजन भी तोलता है, मैं कहती हूँ ये सारे सवाल उस वक्त करने थे जब ज्वेलर से खरीदा था, वो तो आपको सोने के भाव में तोल के ये सब देता है, और रब को देते हैं तो उसमें तो फिर मैल भी होती है हमारी जो हम पूरा साल पहनते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात कही, सब कुछ मांगू तो तुम बुखल करो। अभी तो 250 है और आप देखिए कि कितने मुसलमान, मेरा नहीं ख्याल के 50% मुसलमान भी ज़कात देते होंगे पूरे माल की, और अल्लाह बेहतर जानता है, उसको पता है। बज़ाहर पे हालात पे क्यास करते हुए बात कही। दूसरी चीज क्या है? कि वो तुम्हारे खोट जाहिर करेगा। अल्लाह अकबर, ये चीज तो मेरा दिल बंद करती है। दिल के अंदर जो होता है ना, अल्लाह जाहिर कर देता है। हम जुबान से जितनी बड़ी बड़ी बातें भी करें ना, दीन की, इस्लाम की, ईमान की, अल्लाह ताला असल खोल देता है। तो जरूरत किस बात की है फिर? दिल को पाक रखने की। फिर इसके बाद जो राह अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे फायदा होगा, बुखल करोगे तो नुकसान खुद को होगा, और आखिर में अगर मुंह मोड़ोगे तो तुम्हारी जगह किसी और को ले आएगा। इस ये दूसरी जगह ये आयत, पहले सूरत मायदा में अपने बड़ी तफसील से ये आयत पढ़ी, ऐसे इस मजमून को पढ़ा था, मैं यर्तद्दान दीनिकुम, जो दीन से फिरे फिर अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। यहाँ दूसरी जगह आई, मैं इसको हल्का करके आपके सामने रखना चाहूंगी, और वो क्या कि कोई शौहर अपनी बीवी से कहे अगर तुम सीधी नहीं होती तो तुम्हें तलाक दे के दूसरी ले आऊंगा, कैसा महसूस होगा सुन के? यानी यस्तब्दिल कौमन गैरकुम ثم لا يكونوا امثالكم, ऐसी बीवी ले आऊंगा जो तेरे जैसी नहीं होगी, तुम्हारे जैसी बद अखलाक, आगे से बात करने वाली औरत। मेरा लगे इस धमकी को सुन के ठीक हो जाती है कि अब मेरी जगह कोई दूसरी आएगी इस घर में, ठीक हो जाओ। लेकिन कितनी दफा ये इस बारे में पढ़ी आयतें, ये कुरान की सिर्फ एक मशक हो रही है, एक्सरसाइज। हम पे अपना रहम करें, अमल सारे सारे ही साथ साथ वाजे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने आमाल की हिफाजत करने वाला बनाए और अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला। सुस्ती से बचना है, कमजोरी से बचना है, दुश्मनों के आगे छोटा बन के नहीं जीना, उनकी आंखों में आंखें डाल के जीना है।